Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tau tattvam na jānāmi kīdṛśosi maheśvara yādṛśosi mahādeva tādṛśāya namo namo. Yo asau so aham yajāmi. Om Tat Sat Brahmane Namah. Jagratadi Trayonmuktam Jagratadi Mayam Tatha Aṅkāre Susamvedyam Yatpadam Tannamāmyaham. Jagrat, Swapan aur Sushupti ka varnan karne ke pashchat तुरीय तत्व का वर्णन किया. न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान धनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशेयम एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय. इन सभी श्रुतियों का अभिप्राय केवल इतना ही है कि इस बात पर थोड़ा विचार करो कि क्या सोना, जागना, स्वप्न देखना, इनमें से कोई भी ऐसी स्थिति है जो हमारे अपने हाथ में है? सोए हुए हम जाग जाते हैं, क्या ये हमारे हाथ में है कि हम जाग जाते हैं? अगर हमारे हाथ में हो तो फिर वो चिर निद्रा में कोई भी न सोए. सब जो कुछ है ये किसके हाथ में? ये सचमुच में किसी के हाथ में है या लीला मात्र है, विवर्त मात्र है, स्वभाव है उस प्रिय तत्व का कि उस पर ये सब खेल हो रहा? लहरों का उठना न उठना क्या समुद्र के अपने हाथ में है कि जब वो चाहे तो लहरें चलें और जब वो चाहे ना चलें? समुद्र बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं. लहर बहुत छोटी सी है, लेकिन क्या समुद्र लहर को रोक सकता है? तो जितना जितना आप इस पर विचार करोगे, देखो वेदांत कहने की बात होती है कि इसका संबंध तर्क से है, बुद्धि से है, तार्किक निष्पत्तियों से है, लॉजिकल कंक्लूजन्स. वस्तुतः जितनी भी बुद्धि की लॉजिक है, जितने भी तर्क हैं, वो तर्कों की अंतम परिणति भाव का जागृत हो जाना. जब ये तर्कों के माध्यम से जो कुछ आप जानते हो अगर वो जीवन में ढल गया तो फिर भाव में बह गया, फिर बुद्धि उसमें क्योंकि फिर बुद्धि की जरूरत नहीं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर आपसे बुरा हो ही नहीं सकेगा, चाहने पर भी नहीं हो सकेगा। जैसे गोपियां, या गोपियां चलो पौराणिक कथाएं हैं, आप अपने इन भक्तों की बातों को लो। इन दिनों में मीरा पर चर्चा करते रहे, उनकी बात ही लो। उनके बस में ही नहीं है कि कुछ बुरा हो, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो शक्ति उनकी क्रियाओं का संचालन कर रही है वो परम सत्य ही है। ये वही बात है जो कल शाम कर रहे थे कि कैसे प्राण पिया बिन राखो जीवन भूल गए। क्रियाएं ही उसके हाथ में है तो फिर आपसे गलत होगा ही क्या, गलत देखोगे ही कैसे। क्या ठीक है क्या गलत है यहां तक बुद्धि का काम, लेकिन जब जो समझ आ गया कि ये ठीक है और वो जीवन में ढाल लिया, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हमें पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वहां तक हम पहुंच गए, बस फिर वहां पर किनारे से आगे जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि संसार के आकर्षण को छोड़ पाना, वस्तुतः वो छोड़ना कुछ नहीं है, हमारी बुद्धि में पढ़ाते हुए सिखाते हुए समझाया गया है कि संसार को छोड़ना। अगर प्रारंभ से ही शिक्षा ये हो कि ये बहुत अच्छा है जो कुछ भी आप यहां देख रहे हो, जो भी भोग भोग रहे हो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इनसे भी 100 गुना अधिक और भोग हैं, और उन भोगों का निरूपण करें, उनका लालच दें, ये स्वयं छूटते जाता है। ये जो एक नकारात्मक वृत्ति के पहले से इसका निषेध, बहुत गहरे में जब कभी भी आप वेदांत का सोचोगे चिंतन करोगे, जब तक तो एक ही है दूसरा कोई है ही नहीं तो निषेध किसका करोगे। अगर 2 तत्व हों तो निषेध करें, एक ही तत्व के विवर्त का क्या निषेध, रस्सी के सांप को मारने का क्या प्रयोजन कि हम उम्र भर इसी में व्यतीत कर दें कि ये सांप है इसको मारने की तरकीबें सोचते रहें, लाठियां मंगवाते रहें, लोगों को बुलाते रहें, बैंड बाजे वाले बीन बजाने वाले स्पेरों को बुलाते रहें। जब पता ही है कि ये रस्सी का सांप है तो उसके लिए प्रयत्न काहे का, प्रयत्न केवल इतना ही है कि निर्भयता जीवन में आ जाए। हमें ये जानने के बाद भी कि ये रस्सी है सांप नहीं, फिर भी हम डरते हैं कि नहीं हो सकता रस्सी ना सांप ही हो, इसलिए उस रास्ते पे जाते। तो ये अपने मन की कमजोरी, अपनी दुर्बलता, रस्सी में सांप की बात नहीं है, और मन की कमजोरी या दुर्बलता स्वयं प्रार्थना के कोई इसका तरीका नहीं कि दूर हो। इसके लिए प्रार्थना ही सर्वोत्तम मार्ग है और प्रार्थना से ही उपलब्धि हुई। सभी साधनाएं अंत में जाकर प्रार्थना में शांत हो जाती। ये सब जब आप बहुत गहरे में सोचेंगे तो जिनको हम शांति पाठ कहते हैं, जिनको हम ध्यान के मंत्र कहते हैं, जिनको हम आरती कहते हैं, जिसे हम स्तुति कहते हैं, जिसे हम कवच बोलते हैं, ये सब प्रार्थना के ही विभिन्न रूप। देखो, एक बात ये भी ध्यान में रख लेना, वेदांत स्वार्थ पर टिका हुआ है, क्योंकि यहां तो शब्द हैं और शब्दों के अर्थ हैं। तो स्वार्थ का मतलब होता है कि स्व का क्या अर्थ है, स्वार्थ स्व शब्द है एक, उसका अर्थ क्या है, उसी को जानने में लगे रहना, दूसरे की चिंता ना कर। लेकिन लोगों ने, क्योंकि चिंतन था नहीं या है नहीं या अपने आप कभी सोचा नहीं, जो किसी ने सिखा दिया बोलते, जब आप अपना ही अर्थ ढूंढने में लगे रहोगे तो कहां फुर्सत मिलेगी बाहर मुखी होने की, इधर उधर की बातों। परार्थ, दूसरे का सुख, दूसरे को जाना। स्वार्थ में जब आपको स्व का पता लग जाए तो समझ आ जाएगी पर नाम की कोई चीज है नहीं, ये स्व ही पर के रूप में भासित हो रहा है, प्रतिफलित हो रहा है, जैसे रस्सी में सांप। क्योंकि रस्सी एक ही है, उसमें सांप भी दिखाई दिया, किसी को उसमें डंडा दिखाई दिया, किसी को उसमें भूछिद्र दिखाई दिया, किसी ने उसको पानी की लकीर समझा, रस्सी वही है। तो स्व वही है, उसमें पार ये वो तुम ये सब उसी पे, उसी के विवर्त। वो स्व जिस पे टिका हुआ है उसी पे सब कुछ टिका हुआ है। जब आप उस निष्कर्ष पर पहुंचोगे तो कोई कुछ बाकी रह ही नहीं जाता बेकार, और तब जीवन भाव में ढल जाता। बुद्धि का काम इतना ही है कि आपको खींच तान कर भाव तक ले जाए, और जो ही भाव जागृत हुआ, बुद्धि भाव में परिणित हो जाती है या तिरोहित हो जाती है। आम बोलचाल की भाषा में कह लो कि वो छोड़कर चली गई, एक आपको दरवाजा पंचा के अंदर वो चली गई। चली नहीं गई, वस्तुतः उसी ने ही एक इतना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया है कि अब आपकी सब क्रियाएं वही संचालित कर रहे हैं। सात्विकता स्वयं जीवन में इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसकी कोई दूसरी जरूरत नहीं पड़ती। इन सब श्रुतियों के माध्यम से जो भी हमने इन दिनों में जिनको पढ़ा, उनका जो वास्तविक अभिप्राय है वो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसी बात पर भी अगर आप विचार कर लें कि हमारा सोना जागना स्वप्न देखना क्या ये हमारे अपने बस में है, अगर हमारे अपने बस में नहीं है तो फिर ये किसके बस में है और क्यों, तो यहां से आपको अधिष्ठान और अध्यस्त का विवेक, ये भी एक शब्द मात्र है समझने के लिए। इसी को सचमुच में कहो तो तर्क और भाव कहते हैं, ठोस तर्क है, और तर्क जब जीवन में ढल जाता है तो वो प्यार का रूप धारण कर लेता है। जब तक तर्क तर्क रहता है तब तक उसमें नफरत भी है, द्वेष भी है, अपना भी है, पराया भी। लेकिन तर्क के माध्यम से जिन भी चीजों को आप ठीक समझते हो, तर्क में कुछ ना कुछ ऐसा है कि तर्क के माध्यम से आप समझ रहे हो ये ठीक, लेकिन आप ये भी जानते हो कि ये समझते हुए भी ये ठीक, मैं इसे कर नहीं रहा, इसलिए भाव जागृत नहीं होगा। क्योंकि भावृत जागृत ही उसी से होगा जब जो ठीक है वो जीवन में ढल जाए। यही तो भाव है, और भाव क्या? जो ठीक जीवन में ढल गया तो फिर गलत आपके सामने टिकेगा नहीं, कभी आएगा। भले ही वो सात्विक कवियों और ऋषियों की कल्पनाएं हैं, लेकिन उनके इशारे साधक को जीवन में बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। गोपियों के प्रसंग को ही हम लें, गोपियां कृष्ण के विरह में हर श्याम वस्तु को कृष्ण की छाया समझती। अगर श्याम वर्ण के हिरण भी उधर को निकलते हैं तो वो उन्हें गले लगाती, कहती हैं ये उसी वही आ गया है, ये बन के संदेश उससे पूछती, बादलों से बात करती हैं, मोरों से बात करती हैं। जरा सी कोई बात उससे मिलती जुलती भी होती है तो उसको वो गले लगाते। उद्धव संदेशा लेके जाते हैं और उद्धव का वर्णन ये है कि वो भगवान की उत्सव मूर्ति, अर्थात उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसी, रस्सी भर भी उससे फर्क नहीं है उनका। यहां तक कि वो कपड़े भी वही पहनते हैं भगवान कृष्ण जो पहनते हैं, उनके उतारे हुए कपड़े पहनते हैं, उनके गले की उतराई हुई माला पहनते हैं, अर्थात वो कोई उनको पहचान नहीं सकता कि ये। लेकिन जब उद्धव जाते हैं गोपियों से मिलने तो वो गोपियां जो जानवरों तक को गले लगाने को तैयार हैं, उद्धव को देखते ही 10 कदम दूर होकर बात करते। उसके सम्मान के लिए वो जरूर बिछा देती हैं अपनी ओढ़नी, चुनरी उतार के बिछा दी, और उद्धव को तो ये था कि बड़ा सम्मान होगा, जाते ही गोपियां सोचेंगी कि भाई ये तो आ गया वहां से, क्योंकि कपड़े भी भगवान जैसे हैं, वो भी वैसे ही हैं और सब कुछ है, और उन्होंने तो उससे ठीक से बात भी नहीं कही, वहां एक ओढ़नी से बिठा दिया उसको। और बैठा के उसको कहती हैं कि ये संसार का नियम ही है कि जब कोई ओछा सा व्यक्ति, जब कोई निर्धन व्यक्ति, जब कोई कमीने स्वभाव का व्यक्ति घर से बाहर जाकर किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो फिर वो मां बाप की खबर लेने के लिए चपरासी को भेजता, उसके पास फुर्सत कहां कि माता पिता को देखे। अच्छा हो गया तू आ गया है, फिर उसे देख के कहती है ये जो कपड़े पहन रखे हैं तूने, ये उसी ने पहनवाए थे तुझे या अपने आप ही कहीं से बना के ले आया? ये दिखाने के लिए कि वो कितना अमीर हो गया। अब उद्धव तो बेचारा क्या सोच के आया था, क्या बातें करेंगे, उसको कृष्ण जैसी शक्ल सूरत रूप आंख नहीं उठा पा रहा। कहने का अभिप्राय यह है कि सात्विकता स्वतः जीवन में आ जाती, गोपियों को अपने अस्तित्व की सात्विकता की, अपने चरित्र की रक्षा करने की जरूरत नहीं। गोपियां तो चलो पौराणिक कथा है मान ली बात, मीरा तो इस युग में मुस्लिम पीरियड में जबकि समय ही लूटपाट का था और अत्याचार का था, विलासिता का था, लंपट का था, अकेली घूमती रही, लेकिन अपनों ने उस पर लांछन लगाए जरूर, लेकिन किसी ने उसकी तरफ पूरी निगाह से देखा नहीं। तो कौन उसकी रक्षा कर रहा? उसकी वही गिरधर और गोपाल, पालन करने वाला और रक्षा करने वाला, दोनों ही काम उसमें। सात्विकता में ये जरूरत नहीं रहती कि फिर हम उसकी करें। उपनिषद का चिंतन वस्तुतः भाव तक ले जाने की एक प्रक्रिया, उपनिषदों के माध्यम से भाव तक पहुंचा हुआ व्यक्ति हला देता है दुनिया को। शंकराचार्य जी की आप स्तुतियां पढ़ें, जो शंकराचार्य जी ने स्तोत्र लिखे हैं, कविता में काव्य की दृष्टि से उनकी तुलना में कोई साहित्य नहीं है। ये तार्किक व्यक्ति का काम नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये तर्क प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, ये प्रधान, वो लोग असल में भावुकता में जी रहे हैं, भाव में नहीं। ये छोटे स्तर पर भावुकता है, थोड़ी देर के लिए उछाल आया फिर वैसे गए। भाव वो एक प्रवाह है, जब शुरू हुआ तो फिर नीचे लौट के नहीं आता। वो एक ऐसा वो आंतरिक नृत्य है, अंदर हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है। हम वासी इस देश के, जहां नित प्रीतम से मेल, दीपक जले अगम का दिन बाती बिनते, तो वहां पर जहां बाती और तेल के बिना दीपक जलना है, ना तो उसके बुझने की कोई उम्मीद है और ना ही उसमें किसी दूसरे की जरूरत है जो लाके तेल डालता रहे देखता रहे, क्योंकि वो उससे जल नहीं। वेदांत वो निश्चित मार्ग है जिसमें भटकने का डर नहीं, क्योंकि ये फजूल की बातों से आपको छुड़वाता है लेकिन भाव तक पहुंचाता। जीवन में आपको स्वयं सोचने का मौका देता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं सचमुच में मैं वही कर रहा हूं जो कह रहा हूं, क्योंकि हम दुखी होते हैं इस बात के लिए कि मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूं, दूसरे के लिए उसको सुनाते नहीं कि इसके लिए कर रहा हूं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा, मेरी बात नहीं मान। वेदांत कहता है कि तू अपने लिए ही कर रहा है, अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहा है, दूसरे के लिए क्या करता है? दूसरे के लिए करना हो तो दूसरे को समझो, समझाओ नहीं। अगर दूसरे को समझने की कोशिश करोगे तो आप वेदांत के चिंतक हो, और अगर आप दूसरे को समझाने की कोशिश करोगे तो फिर आप अहम में जी रहे। वो तो अहम की पूर्ति है।